नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी चालने निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे पद्भ्यां चलन यः प्रतिमा स्वरूपो ब्रह्माण्ड देवो हि सताह गम्यम् देशं ययो विप्रकृतेर्भूतेऽहम् तं साक्षि गोपालमहं नतोऽस्मि भगवान श्रीकृष्ण मूर्ति के रूप में वृंदावन से विद्यानगर पहुंचे 100 दिन चले 3 महीने से ज्यादा वृंदावन से 100 दिन चले मूर्ति चली है प्रतिमा स्वरूप श्री कृष्ण ब्रह्मण्य देव जो भगवान ब्राह्मणों से बहुत स्नेह करते हैं यह ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले उनको पूज्य मानने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रतिमा के रूप में 100 दिन चले और एक ब्राह्मण के लिए चले देशम ये जो विप्रकृति अद्भुते हैं ब्राह्मण के कारण भगवान चले वृंदावन से और वो अपने देश में ले गया उड़ीसा देश में पहुंचे तम साक्षी गोपाल महम नमामि नतोस्मि ऐसे साक्षी गोपाल प्रतिमा स्वरूप भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। इसके पूर्व के अध्याय में माधवेन्द्रपुरी की कथा है भगवान चैतन्य महाप्रभु कथा के अंत में उनके द्वारा रचित एक श्लोक पढ़ने लगे उस श्लोक की बड़ी महिमा है जैसे समस्त मणियों में कौस्तुभ मणि सबसे श्रेष्ठ है वैसे ही रसमय श्लोकों में यह श्लोक सबसे श्रेष्ठ है ऐ दीन दयार्द्रनाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्यस् इसी श्लोक को पढ़ते पढ़ते माधवेन्द्रपुरी जी ने अपने शरीर का त्याग किया था तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कभी भक्तों के बीच उसका स्मरण किया जाएगा अभी मैं साक्षी गोपाल जी की कथा कहता जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो श्री अद्वैत चंद्र की जय हो और समस्त गौर भक्त वृंद की जय हो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उनकी जय हो चलिते चलिते आई लाला जाजपुर ग्राम बराहा ठाकुर देखी करिला प्रणाम चलते चलते भगवान चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं नवद्वीप से पुरी जा रहे हैं तो रेमुना में पहुंचे थे वो कथा हो चुकी तो वहां से चलते चलते जाजपुर ग्राम में गए तो वहां भगवान बराह देव रहते हैं उनकी प्रतिमा है तो बराह ठाकुर देखी करिला प्रणाम बराह भगवान को देख करके प्रणाम किए और नृत्य गीत कैला प्रेमे बहुत स्तवन जाजपुरे से रात्रि करिला यापन तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बहुत नृत्य किए गीत गाए कीर्तन किए और भगवान बराह देव की बहुत स्तुति किए और उस रात्रि याजपुर में ही रहे कटके आईला साक्षी गोपाल देखी ते गोपाल सौंदर्य देखी हैला आनंदित। उस समय साक्षी गोपाल भगवान कटक में रहते थे, तो कटक आए चल करके और गोपाल का सौंदर्य देख करके बहुत आनंदित हुए। प्रेमावेश नृत्य गीत कैला कतक क्षण आविष्ट है या कैला गोपाल स्तमन। प्रेमावेश में बहुत देर तक नृत्य गीत किए, कुछ क्षण नृत्य गीत किए उस समय के लिए और आविष्ट हो गए प्रेम में और श्री गोपाल की स्तुति करने लगे। चैतन्य महाप्रभु के लिए सब कह रहे हैं, सही रात्रि तहां रही भक्त गण संगे गोपाल र पूर्व कथा सुने बहुरंगे। उस रात्रि कटक में ही भगवान रुके और साक्षी गोपाल जी की कथा स्वयं सुनने लगे। बात यह थी कि नित्यानंद प्रभु पहले कटक आए थे। नित्यानंद गोसाई जब तीर्थ भ्रमिला साक्षी गोपाल देखी बारे कटक आईला। जब नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे थे तीर्थों में तो वे कटक आए थे साक्षी गोपाल को देखने के लिए। साक्षी गोपालेर कथा सुनी लोक मुखे सही कथा कहें प्रभु सुने महासुखे। साक्षी गोपाल जी की कथा लोगों के मुख से सुने थे नित्यानंद प्रभु, तो उसी कथा को वे कहने लगे और चैतन्य महाप्रभु अपने अन्य भक्तों के साथ सुनने लगे। माधवेन्द्रपुरी की कथा क्षीर चोर गोपीनाथ की कथा स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहे, परंतु साक्षी गोपाल जी की कथा नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रोता है। पूर्वे विद्यानगर दुई तो ब्राह्मण तीर्थ करी वाले दुहे करिला गमन। पूर्व काल की बात है, विद्यानगर से दो ब्राह्मण चले तीर्थ यात्रा में तीर्थ करने के लिए। गया वाराणसी प्रयाग सकल करिया मथुरा ते आइल दुहे आनंदित भैया। दोनों तीर्थ यात्रा के लिए निकले। एक ब्राह्मण थे, बहुत धनी थे और उनके साथ एक लड़का चल रहा था, तो वह सेवक करता जाता था। वो बहुत गरीब लड़का था, बहुत बच्चा नहीं था, तो किशोरावस्था युवक था, युवक हो गया था, तो वो चल रहा था। तो गरीब लड़का था और जो धनी ब्राह्मण थे उनकी सहायता के लिए चल रहा था। ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ब्राह्मण भगवान के नित्य पार्षद थे, भगवान की नित्य लीला में रहते। केवल ब्राह्मण ही नहीं थे, परम वैष्णव थे दोनों। तो गया वाराणसी प्रयाग सकल करिया, गया जी आए पहले उड़ीसा से, गया जी आए, गया जी का दर्शन करके जो कृत्य करना था पितरों को तर्पण करना पिंडदान करना वो किए। इसके बाद वाराणसी आए, गंगा जी में स्नान किए, भगवान शिव का दर्शन किए और बिंदु माधव जी का दर्शन किए। इसके बाद प्रयागराज आए, वहां त्रिवेणी में स्नान किए, अक्षय वट का दर्शन किए और हम बेणी माधव का दर्शन किए। इसके बाद मथुरा आए, यही रूट है ना, मथुरा आए दोनों ब्राह्मण। तो वन यात्रा वन देखे गोवर्धन, वन में भ्रमण करने लगे। कई वन है ब्रज में, अनेक वन है, तो वन यात्रा में वे सब घूमने लगे। तो देखते देखते बाद में वे गोवर्धन आए, वन देखी देखे गोवर्धन, द्वादश वन देखी शेषे गेला वृंदावन। देखते देखते वो लोग वर्धन जी की परिक्रमा किए, उसको देखे, और इसके बाद सबके बाद वृंदावन आए। द्वादश वन देखी से गेला वृंदावन। द्वादश वन जमुना जी के पूर्वी कछार पर, पूर्वी तट पर पांच वन हैं, बेल वन, भद्र वन, भंडीर वन, लौह वन और महावन, पांच वन हैं। पश्चिमी तट पर सात वन हैं, वृंदावन, काम्य वन, ताल वन, कुमुद वन, खदीर वन, खिदीर वन, मधुबन है, वही भूल रहा है। तो सात वन हैं मथुरा जमुना जी के पूर्व पश्चिमी तट पर, पांच वन हैं पूर्वी तट, तो उसको द्वादश वन कहें, सात और पांच बारह। द्वादश वन में देखे और अंत में वृंदावन गए, वृंदावन घूम लिए थे लेकिन फिर वृंदावन गए। वृंदावन में गोविंद स्थाने महादेवालय से मंदिर गोपाले और महासेवा हुआ। तो जब वृंदावन में गए तो जहां पर श्री गोविंद देव प्रकट हुए थे केसी घाट के पास, तो लगभग उसी के पास, अभी गोविंद जी प्रकट नहीं हुए थे, तो वृंदावन में गोविंद स्थान में महादेवालय बहुत बड़ा मंदिर था, महादेवालय। उसी मंदिर में, उस मंदिर में महोत्सव चलता रहता था। केसी तीर्थ कालिये हरदादी के कैला स्नान श्री गोपाल देखित है करिला विश्राम। तो ये लोग घूम रहे थे वृंदावन में, तो केसी घाट पर स्नान किए और इसके बाद काली हरद में, काली दह में स्नान किए, और भी कई जगह स्नान किए, और श्री गोपाल देखी तह करिला विश्राम, श्री गोपाल जी का दर्शन किए। ये गोपाल जी दूसरे हैं जिन गोपाल की कथा पहले हुई थी। तो गोपाल सौंदर्य दुहार मन नीलहरी, सुख पाया रहे तहा दिन दुईचारी। गोपाल जी बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर थे। मूर्ति की बात हो रही है, बराबर ध्यान रखना चाहिए, प्रतिमा स्वरूप बहुत सुंदर भगवान थे गोपाल जी। तो उनके दर्शन से लोग सुख पाए और दो चार दिन रह गए। दो चार दिन कोई दिन करके नहीं बताया जा रहा है, कुछ दिन रहे। क्यों रह गए मंदिर में? मंदिर में महोत्सव प्राय होता ही रहता था, और रह गए भगवान को रोज देखने के लिए, बहुत मन लगा है गोपाल जी को देखने में। दुई विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध प्राय, दोनों में एक ब्राह्मण वृद्ध प्राय थे, वृद्ध थे। आर विप्र जुआ तार करे न सहाय, और दूसरा ब्राह्मण जो जुआ था, जुवक था, वो उसकी सहायता करता था। छोट विप्र बोले सदा, छोट विप्र करे सदा तहार सेवन, तहार सेवाए विप्र तुष्ट है लमान। तो छोटा ब्राह्मण बड़े ब्राह्मण की हमेशा सेवा करता था, सभी सेवा, पानी लाना, भोजन देना, प्रसाद देना, चरण दबाना और सब एक सेवा करता था। इस सेवा से बड़ा बड़ा ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुआ, शुरू से अंत तक सेवा किया तो बहुत प्रसन्न हो गया। तो बोला, प्रसन्न होकर के बड़ा ब्राह्मण बोला, विप्र बोले तुम्ही मोर बहु सेवा कैला सहाय, सहाय हैया मोरे तीर्थ कराइला। तुमने मेरी बहुत सेवा किया और तीर्थ यात्रा में मेरी सहायता किया, सबने तीर्थ कराया। पुत्र वो पितार ऐसे ना करे सेवन, तुम्हारा प्रसादे आमी ना पैलाम श्रम। बेटा भी इतनी सेवा पिता की नहीं करता है जितना तुमने किया है सेवा। पुत्र होकर के कुछ पुत्र लोग ऐसे हैं जो पिता की सेवा तो बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन कोई पिता का भक्त भी हो तो वो भी ऐसी सेवा नहीं कर सकता है जैसा तुमने मेरी सेवा किया। कृतज्ञता है तुम्हार ना कैले सम्मान, अतए वो तुम्हार हमें दिव कन्यादान। यदि मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करूंगा तो कृतघ्नता का दोष आएगा, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा, छोटी बेटी थी वो, मैं कन्यादान करूंगा। हर एक समय में गरीब व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता है, उस समय भी यही बात है, ब्राह्मण गरीब था इसलिए विवाह होना कठिन था। तो कृतज्ञता के भाव में बड़े ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा, तुमको कन्यादान दूंगा। छोट विप्र बले सुन विप्र महाशय, असंभव कह के में जय नहीं है। तो छोटे ब्राह्मण ने कहा कि जो बात पूरी नहीं हो सकती है, जो काम हो नहीं सकता है, उसको करने की प्रतिज्ञा क्यों आप कर रहे हैं? ऐसा कभी होगा नहीं कि आपकी पुत्री का विवाह मेरे साथ हो, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके पुत्र और आपके संबंधी कोई नहीं करने देंगे, कोई नहीं करने देंगे, इसलिए आप ये बात मत कहिए। छोट विप्र कहे सुना विप्र महाशय, असंभव कह के निजी नहीं है। असंभव बात क्यों कहना है? महाकुलीन तुम्हें विद्याधनादि प्रवीण, आमी अकुलीन और धन विद्याहीन। आप बहुत कुलीन हैं, आपका कुल बहुत बड़ा रहा है और आप विद्या से और धन आदि से पूर्ण हैं। आपकी पढ़ाई, आपके परिवार में सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बड़े हैं, विद्या है, धन है, और मैं अकुलीन, और मैं बिल्कुल गरीब परिवार में जन्म लिया हूं, और धन विद्या ही, धन और विद्या से हीन हूं, न कोई पढ़ाई लिखाई किया और न धन अर्जन किया। तो ऐसे गरीब से आप विवाह करेंगे, कहेंगे तो घर में विरोध होगा, आप नहीं कर पाएंगे। दोनों भक्त थे, लेकिन विवाह की कथा हो रही है। चैतन्य महाप्रभु विरक्त शिरोमणि, वे विवाह की कथा सुन रहे हैं। देखिए, कभी कभी विरक्त ब्रह्मचारी और सन्यासी को भी विवाह में जाना पड़ता है, लेकिन वहां केवल भक्ति का संबंध होता है, लौकिक व्यवहार नहीं होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लिखे हैं इसी प्रसंग में कि चैतन्य महाप्रभु कथा सुन रहे हैं, विवाह की कथा, तो सब जगह भगवान की भक्ति देखनी चाहिए, मूल चीज ये है। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के विवाह में कभी कभी भाग लेते थे, वही कराते थे। पहले वहां विवाह नाम की कोई चीज ही नहीं थी विदेश में, लेकिन प्रभुपाद जी वैदिक विधि से उनका विवाह कराते थे, तो इसमें दोष नहीं है। तो छोटा ब्राह्मण कहा कि महाकुलीन तुम विद्या धनादि प्रवीण, आमी अकुलीन और धन विद्याहीन, मैं धन विद्या आदि से हीन हूं। आदि शब्द मतलब सुंदरता आदि से भी, आदि शब्द का अर्थ ये है। तो आप ये बात मत कहिए, कन्यादान पात्र आमी ना है तुम्हार, कृष्ण प्रीति करी तुम्हार सेवा व्यवहार। उसने कहा कि बाबा, मैं आपके कन्या के योग्य पात्र में नहीं है। अब रही बात कि मैं आपकी सेवा किया, तो मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा किया, आपकी सेवा करने से भगवान कृष्ण हम पर प्रसन्न होंगे, इसके लिए मैं सेवा किया, हमारे मन में और कोई कामना नहीं। ब्राह्मण सेवाए कृष्ण प्रीति बढ़ है, तहार संतोषे भक्ति संपद बढ़ है। ब्राह्मण की सेवा करने पर भगवान कृष्ण को बहुत सुख मिलता है, आनंद आता है, और श्री कृष्ण जब संतुष्ट होते हैं तो उससे उनके चरणों में भक्ति बढ़ती है। इसलिए मैं भक्ति बढ़ाने के लिए आपकी सेवा किया। ये बात हो रही थी मंदिर में थोड़ी दूर पर, तो बड़े विप्र कहे तुम ना करो संशय, तुम्हारे कन्या दिव आमी करी ल निश्चय। तुम संशय मत करो इसमें कि मैं कन्यादान नहीं कर सकूंगा, मैं कन्यादान तुमको करूंगा, ये निश्चय करके कह रहा हूं। ऐसा नहीं केवल थोड़ा विचार आया और बोल दिया, निश्चय किया हूं, निर्णय कर लिया हूं। छोट विप्र बोले तुम्हारे स्त्री पुत्र सब कहत बहुत जाति गोष्ठी तुम्हार बहुत बांधव। छोटे ब्राह्मण ने कहा कि अब जरा सावधान हो जाइए, विचार कर लीजिए अपने परिवार पर। एक तो आपकी पत्नी है, आपके बेटा है, सब जहर खा करके मर जाएंगे। अगर हमारे साथ विवाह करने की बात आप जिम ही कहेंगे और करेंगे, अगर कर दिए तो वो लोग तो जहर खाकर मर जाएंगे, विष खाकर मर जाएंगे। आपकी जाति भाई बिरादरी बहुत है, आपके बहुत बांधव हैं, परिवार बड़ा है, तत्सव वाले सम्मति बिना नहीं कन्यादान, बिना अपने परिवार से पूछे और अपने संबंधियों से पूछे कन्यादान होता नहीं है। तत्सव वाले सम्मति बिना नहीं कन्यादान, रुक्मिणी पिता भीष्मक ताहते प्रमाण। रुक्मिणी के पिता भीष्मक जी प्रमाण है। भीष्मक जी चाहते थे कि हमारी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण से हो, लेकिन उनका लड़का रोक दिया और विवाह तय कर दिया शिशुपाल से। ये कथा तो सुने ही है, आखिर वैष्णव है तो कथा तो जानते ही होंगे। दसों बार सम्मति बिना न है कन्यादान। कन्यादान ऐसे नहीं होता है कहीं अकेले कहीं निश्चय कर लिया करूंगा, अपनी पत्नी से, अपने लड़कों से, अपने संबंधियों से पूछना होता है ना। आपने सुना है ना कि भीष्मक जी विवाह करना चाहते थे लेकिन सारा परिवार विरोध, एक बेटा विरोध कर दिया। भीष्म के इच्छा कृष्ण कन्या समर्पित है, पुत्र विरोध कन्या नारी लव अर्पित है। उनकी इच्छा थी भीष्मक जी की कि मैं अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण से करूंगा। कहे भी तो सभा में रुक्मी विरोध कर दिया, क्योंकि रुक्मी कंस का मित्र था, कंस के मरने से वो बहुत दुखी हो गया था। हमारे दोस्त को मारा गया, दोस्त कितना बदमाश था, अपने भांजों को मारा, अपने बहन बहनोई को जेल में बंद किया था, क्या क्या बहुत पाप किया था। लेकिन जो जिसका ऐसे साथी होता है वह ज्ञान बस उसके दोस्त पर विचार नहीं करता, वो प्रचार करता था कृष्ण इतना खल है कि अपने मामा तक को मारा, मामा भांजा को मारा, इसका कोई ध्यान नहीं था। विरोध किया, भीष्मक महाराज से कहा कि नहीं, कभी नहीं हो सकता है, कृष्ण के पास क्या है, कृष्ण अपनी राजधानी मथुरा भी छोड़ करके भाग गया और कहीं गुजरात में किला बना करके रहता है पानी के अंदर, जमीन पर कोई खेत है नहीं, राजा है नहीं, भगेड़ू है, उसके साथ हमारी बहन का विवाह नहीं होगा। बहुत तर्क किया, जबकि वो भगवान है, परम ईश्वर। भीष्मक जी ने अच्छा चुना था लेकिन विरोध किया। तो भीष्मक जी पुत्र के पेच में पड़ करके कन्यादान नहीं कर सके, भगवान ने कन्या का अपहरण किया, न कन्यादान हुआ। कन्यादान नहीं कर सके एक पुत्र के विरोध से, जो कि सारा परिवार चाहता था। रुक्मिणी की मां चाहती थी, पिताजी तो चाहते ही थे, और भी छोटे भाई जो थे सब चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति के विरोध करने से नहीं हुआ कन्यादान। बड़ विप्र कहे कन्या मोर निज धाम, कन्या हमारी बेटी हमारा धन है, मैं पिता हूं, मेरा अधिकार है कि मैं किससे उसका विवाह करूं, कौन रोकने वाला है, कौन रोकेगा, हमारी बेटी है ना। बड़ विप्र कहे कन्या मोर निज धन, निज धन दीते निषेधीवे कौन जान, अपनी कन्या को मैं दूंगा किसी बर के आप तुम्हारे लिए, तो इसको कौन निषेध करेगा। अभी परिवार से दूर हैं, वृंदावन में हैं, उड़ीसा में जब पहुंचेंगे तब पता चलेगा कौन मना करेगा। तुमाके कन्या दीव सवार सभा के करी तिरस्कार, तुम्हारे कन्या दीव सभा के करी तिरस्कार, संशय न करो तुम्हें कर स्वीकार, तुम स्वीकार करो, तुमको कन्या दूंगा, सभा के करी तिरस्कार, जो भी बाधा देगा सबका तिरस्कार करूंगा, बात नहीं मानूंगा, कौन रोकने वाला है, अगर रुकने कोई आया तो मैं उसका तिरस्कार करूंगा, शैतान, कन्या मेरी है, मेरी बेटी है, मैंने जन्म दिया है और पाला पोसा है, हमारा क्या अधिकार नहीं है विवाह करने का, तुम कौन हो रोकने वाले। उस ब्राह्मण ने कहा कि ये मैं करूंगा, तुम अब संशय न करो, तुम संशय मत करो, कर स्वीकार, तुम स्वीकार करो। छोट विप्र कहे यदि कन्या दीते मन, गोपाल रा आगे कह ये सत्य वचन, यदि कन्या दान की आप प्रतिज्ञा करते हैं, आपको इच्छा है तो चलिए गोपाल जी के सामने कहिए। मंदिर में ही थे वे लोग, तो गोपाल जी के श्री विग्रह के सामने आकर के कहेंगे। गोपाल रा आगे विप्र कहिते लगी लो, तुम्ही जाना हे गोपाल जी, आप इसको जान लीजिए, तुम्ही जानो निज कन्या इहारे आमी दिल, दीब नहीं दूंगा नहीं। वो बोला कि मैं इस लड़के को अपनी कन्या दे दिया, दिल आपके सामने बोल रहे हैं। और गोपाल जी भगवान का विग्रह है, प्रतिमा है, लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान के प्रतिमा में, भगवान में भेद नहीं जानते, वो जानते हैं कि ये प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, यही सिद्धांत है वास्तव। तो बड़े विप्र ने कहा, गोपाल आगे विप्र कहते लागी लो, तुम्ही जानो निज कन्या इहारे आमी दिल, इहारे सामने ही है, आप देख ही रहे, इस लड़के को हमने कन्या दान दिया, दे दिए। अच्छा, अब देखिए क्या कथा होती है। छोट विप्र बोले ठाकुर तुम्ही मोर साक्षी, और छोटे ब्राह्मण ने कहा गोपाल जी से, ठाकुर अब आप ही मेरे गवाह हैं, अगर जरूरत पड़ गई तो आपको साक्षी बनना पड़ेगा। छोट विप्र कहे ठाकुर तुम्ही मोर साक्षी, तुम्हारा साक्षी बोला यदि यदि अन्यथा देखी, यदि विवाह में कोई गड़बड़ी हुई तो मैं आपको बुलाऊंगा, आप सुन लीजिए। क्या विश्वास है इन भक्तों का भगवान, आप देख रहे हैं ना, आपके सामने कन्यादान किए, तो अगर अन्यथा कोई बात हुई तो मैं आपको बुलाऊंगा। यही बोली दुई जन चलीला देशे रे, गुरु बुद्धे छोट विप्र बहु सेवा करे। इसके बाद वे दोनों ब्राह्मण तीर्थ पूरा करके चले, गोपाल जी को प्रणाम करके दोनों चले। छोटा ब्राह्मण बहुत सेवा करता था, गुरु बुद्धि से सेवा करता था, श्रेष्ठ बुद्धि से। देशे आसी दुई जने गेला निज घरे, अपने स्थान पर पहुंचकर विद्यानगर पहुंच करके दोनों अपने अपने घर गए। कत दिन बड़े विप्र चिंतित अंतर, वहां गया तो वहां की स्थिति दूसरी थी, बहुत चिंता में पड़ गया बड़ा बड़ा भाव कि मैं विवाह के लिए कह दिया क्या करूं, चिंता में रहता था। तीर्थे विप्र वाक्य दिलु केमते सत्य है, मैं तीर्थ में वृंदावन में वचन दिया कन्यादान का, ये कैसे सत्य होगा, स्त्री पुत्र आदि स्त्री पुत्र जाति बंधु जानी बे निश्चय, यदि कन्यादान करता हूं तो सब जुटेंगे ही, स्त्री जानेगी पुत्र जानेगा जाति भाई बंधु सब जानेंगे। अब उस कुछ बोल ही नहीं पाता था, वहां गरज करके कहा कि मैं कन्यादान दे चुका और गोपाल जी साक्षी हैं। तो छोटे विप्र ने कहा कि हाँ गोपाल जी साक्षी। उसने कहा गोपाल जी, तो भगवान मुस्कुराए थे, आप देखे हैं ना इन्होंने वचन दिया है, तो कोई जरूरत पड़ गई तो आपको गवाह के रूप में बुलाऊंगा। एक दिन निज लोक एकत्र करी ल पासवार आगे सब वृतन तो कही ला। तो ब्राह्मण बड़े चिंता में थे, सज्जन थे, सत्यवादी थे। एक दिन अपने निज जन सारा गुतिया परिवार नहीं बुलाए, अपने खास आदमी को बुलाए, स्त्री को पुत्र को और कोई भाई वही होंगे उनके, इनको बुलाए और कहे। पहले तो ये कहना चालू किया कि जब मैं तीर्थ यात्रा में गया था ये लड़का मेरी बहुत सेवा किया, तो मैं इसकी सेवा से बहुत कृतज्ञ हूं और मैं अपनी बेटी का विवाह से करना चाहता हूं। ये सुनते ही सब लोग रोना पीटना चालू कर दिए, तुमको क्या हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, बूढ़ा हो गया तो दिमाग भी बूढ़ा हो गया क्या, कौन काम कैसे करना चाहिए, तुम बोले कैसे इस बात को। सुनी सब गोष्ठी तार करे हाहाकार, ऐसे बात मुखे तुम्हें ना आनी बे यार, ये बात कभी मुंह से मत निकालना है, मैं बेटी का विवाह उससे करूंगा, कभी मुंह से मत निकालना। सब लोग हाहाकार करने लगे, हाय 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 ये क्या हो रहा है, नीचे कन्या दिले कुल जाइबे का नाश, नीच को कन्या दान करने से कुल का नाश होगा। सुनिया सकल लोक करिबे उपहास, और ऐसा करेंगे तो सब दुनिया हंसेगी कि अरे इसके दिमाग में क्या आ गया, थूकेगी तुम पर, इस प्रकार की बात बोले, कभी भूल कर बोल रहा मत। विप्र बोले तीर्थे वाक्य के मने करी आन, विप्र बोले तीर्थ वाक्य के मने करी आन, मैं तीर्थ में बात कहा हूं वृंदावन में, कैसे इसको मैं टाल सकता हूं। वो अपनी प्रवस्था बता रहे थे, जे हौक से हौक आमी दिवक कन्यादान, भी कहे कि जो भी हो मैं कन्यादान करूंगा, ज्ञाति लोक कहे मोरा तुमा के छाड़ी ब, जितने परिवार बंधु बांधव थे हम तुम्हारे घर पानी भी नहीं पिएंगे, हम छोड़ देंगे तुमको अगर ऐसा किए तो, इस लड़के से अगर विवाह किए तो हम पानी पीना सब बंद, न्योता हकारी सब छोड़ देंगे, आना जाना बोलना चलना सब छोड़ देंगे। और स्त्री पुत्र तो यहां तक, स्त्री पुत्र कहे विष खाई या मरी ब, वो लोग तो कहे कि हम छोड़ देंगे, और स्त्री और पुत्र बोले कि हम विष खा करके मर जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। अब तो ब्राह्मण बड़ा फेर में पड़ा। विप्र बोले साक्षी बुलाइया करीब कन्याय, जीती कन्या लवे मोर व्यर्थ धर्म जाए। तो ब्राह्मण ने कहा, छोटा ब्राह्मण छोटा बच्चा वो लड़का गवाह तक बुलाएगा, उनके सामने कहा था कि मैं गोपाल जी को बुलाऊंगा, वो गवाह बुलाएगा, अंततः बेटी का विवाह उससे होगा, लेकिन हमारा धर्म जाएगा झूठ बोलने, सत्य वचन हमारा चला जाएगा, लेकिन तुम लोग ऐसे कर रहे हो, पर विवाह तो होगा, गवाह बुलाएगा। तो पुत्र बोले, कौन गवाह था? तो ब्राह्मण ने कहा, बड़े ब्राह्मण ने, स्वयं गोपाल जी गवाह थे। तो बड़ा लड़का, वो नास्तिक जैसा था, वो कहा, ओ मूर्ति। पुत्र बोले, प्रतिमा साक्षी सेह दूर देशे, के तुम्हारे साक्षी देवे, चिंता करो किसे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? साक्षी देने वाला मूर्ति है, और वो भी उतना दूर देश में, किसी उसमें सवारी नहीं थी कि जाकर के लाद करके ले आया जाए। एक तो पत्थर, एक तो मूर्ति गवाही देने वाली है, और दूसरे दूर देश में है, तो फिर क्यों चिंता करते हो? कहां आएगा वो प्रतिमा, कहां आएगी और तुमको साक्षी देगी? चिंता करे किसे, क्यों चिंता कर रहे हो? ये गवाही वाही नहीं होगी और कन्या का विवाह नहीं किया जाएगा। ना ही कही ना करियो, ये मिथ्या वचन, हम ये नहीं कह रहे हैं। सब लोग, बेटा बोला, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि नहीं नहीं करूंगा, आप ये कहिए कि आर कहिए मोर किछु नाही कस्मरण। आप इतना ही कहिए कि हमको कोई याद नहीं है कि हम क्या बोला। अरे वही तो झूठ हुआ। आप एकदम ये मत कहिए कि मैं नहीं दूंगा। अगर पंचायत जुटेगी अभी, मूर्ति तो आएगी नहीं, तो बेकार बात है, लेकिन गांव के लोग जुटेंगे तो कहेगा कि हमको कोई स्मरण नहीं है, कुछ याद ही नहीं कब क्या क्या बोला था कैसे। नहीं कही ना कहियो, नहीं कह करके ऐसा नहीं मत कहिए, ये मिथ्या वचन, हम आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, चुप रह जाइए, और बोलिए तो कहे कि हमको कुछ याद नहीं है कि कब क्या कहा। तुम्ही यदि कहो आमी किछु ये न जानी, तबे आमी न्याय करी ब्राह्मण ले जीनी। जब आप कह देंगे कि हमको कुछ याद नहीं है, तब मैं उस लड़के को देख लूंगा, तब वो कैसे विवाह करता है और कौन साक्षी आता है। केवल आप इतना कहिए कि कुछ हमको याद नहीं। ये तो सुनी विपरीत चिंतित है मन, और ये सुन करके बड़े ब्राह्मण का चित्त बहुत चिंतित हुआ, क्या यह धर्म हो रहा है। एकांत भावे चिंते विप्र गोपाल चरण, एकांत भाव से, अनन्य भाव से गोपाल जी के चरणों का चिंतन करने लगे। हे प्रभु, आप ही कोई उपाय बताइए। अब इधर अगर ये कहता हूं कि कन्यादान दूंगा तो स्त्री सुसाइड करेगी, आत्महत्या करेगी, बेटा भी आत्महत्या करेगा, अब क्या करें? तो हे गोपाल जी, अब आप कोई, आप महाप्रभावशाली हैं, अद्भुत आपकी शक्ति है, कोई उपाय कीजिए। मोर धर्म रक्षा पाए ना मरे निज जान, दो चीज की मांग, हमारा धर्म न जाए और हमारे स्वजन भी न मरे। आखिर आज कन्या दान दे, उसी समय स्त्री मर जाए जहर खा करके, बेटा भी मर जाए, तो अपना सारा समाज ही चला गया। धर्म रक्षा भी होनी चाहिए, हमारा वचन सत्य होना चाहिए। दुई रक्षा कर गोपाल लैनु शरण, मन ही मन शरण, दोनों चीज बचाइए, हमारे स्वजनों को बचाइए और हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। हे गोविंद, हे गोपाल, मैं आपकी शरण ले रहा हूं। इस तरह से चिंता में पड़े। यही मत विप्रचित चिंतित लागिल, आर दिन लघु विप्र तार ठाई आयल, तार घरे आयल। इस तरह चिंता में बेचारे पड़े हुए थे बड़े ब्राह्मण, कैसे धर्म की रक्षा होगी, भगवान की शरण में हो गए। तो एक दिन वो लड़का आया इनको याद दिलाने के लिए, उसने सोचा वो आकर के आसिया परम भक्त, आसिया परम भक्ते नमस्कार करी, विनय करिया कहे कर दुई जोड़ी। वो आया तो परम भक्ति से बड़े ब्राह्मण को प्रणाम किया और विनय से झुक करके वचन कहा, तुम्ही मोरे कन्या दीते करिया छंगी कार, एवे किछु नहीं कर की तुम्हार विचार। आपने हमको कन्यादान करने के लिए कहा था, अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपका क्या विचार है? वास्तव में ऐसा बंधन है परिवार का कि उसके खिलाफ कुछ करना कठिन होता है। तो की तुम्हार विचार, ये तो सुनी से विप्र रहे मौन धरी। बड़े ब्राह्मण बिल्कुल चुप रह गए। ये तो सुनी से विप्र रहे मौन धरी, तार पुत्र मारीते आइल हाथे ठेका करी। अभी वो बात ही बाप तो चुप हो गया, तो उसका जो बेटा था वो हाथ में लाठी लेकर के मारने आया, लड़के को मरने आया। अरे अधम, अरे अधम, मोर भगनी चाह विवाहित, बामन है या चांद जिन चाह तो धरित, बवना होकर के जैसे चंद्रमा को पकड़ना चाहे वैसे तुम मेरी बहन से विवाह करना चाहते हो चंदाल, यहां से हटते हो कि नहीं? ठेंगा देखी से विप्र पलाइया गेला, लाठी दे करके छोटा ब्राह्मण पलायन कर गया, चला गया। आठ दिन ग्रामीण लोग के एकत्र करीला, दूसरे दिन गांव के लोगों को इकट्ठा किया पंचायत के लिए। सब लोग इकट्ठा हुए तो सब लोग के बड़ विप्रे आनिया डाकिया आनीला। जब उसने सारा वृत्तांत कहा तो लोगों ने, पंच लोगों ने, गांव के लोगों ने बड़े ब्राह्मण को बुलाया, उसको बुलाओ बुलाओ बुलाओ, किसी को भेज करके बुलाया, ऐसा वचन बोला है और अपने वचन से टल रहा है, बुलाओ उसको। तो कोई बुलाया, कोई चौकीदार गया होगा बुलाने, तबे से ही लघु विप्र कहते लगे। तो ब्राह्मण भी आया उस सभा में जुटा, जब ब्राह्मण गया तो घर के सब लोग गए, पंचायत भाई क्या होने वाला है, यही का और वही लड़का पंचायत इकट्ठा किया। तो बोला, इह मोर कन्या दीते कर अच्छे अंगीकार, एबे सेना देन पूछ ताहर व्यवहार। सभा में बोला कि इन्होंने अपनी कन्या देने का वचन दिया था वृंदावन में, अब क्यों नहीं कन्यादान कर रहे हैं, इनका व्यवहार पूछिए, क्या विचार हो गया। तभी से विप्रे पूछिला सर्वजन, तो बड़े ब्राह्मण से सब लोगों ने पूछा है, आपने वचन दिया था ना वृंदावन में, साथ में गया था, आपकी सेवा किया, तो आपने कन्यादान देने का वचन दिया था ना, तो वो क्या कहता है। और ये लोग कहे, तबे से ही विप्र पूछिला सर्वजन, सभी लोग प्राय पूछे, और कन्या के लिए ना देह यदि दिया छे वचन, यदि तुमने वचन दिया था तो कन्यादान क्यों नहीं कर रहे हो। विप्र कहे सुन लोक मोर निवेदन, कबे की बलिया छे मोर नहीं पसमरा। हे इस गांव के सब लोग सुनिए, हम कब क्या बोला था मुझे स्मरण नहीं, जो लड़के ने सिखाया था वही बोल दिए, पूरा पूरा याद था, उसकी चर्चा भी किए थे, लेकिन लड़के के कहने से कह दिए कि कब क्या बोला था मुझको कुछ स्मरण नहीं। एतत् सुनी तारपुत्र वाक्य छले पाइया प्रगल्भ हैया कहे सम्मुख आसिया। ये जो ब्राह्मण बोला तो उसका लड़का सामने आकर के बोला इसमें क्या है, इनकी उम्र हो गई है याद नहीं है तो क्या आश्चर्य है। और कुछ है और कहा, कुछ और बात है समाज में बोला। तीर्थ यात्रा पिता संगे छिल बहु धन, धन देखी एई दुष्टेर लोभ है लमन। ये हमारे पिता के साथ तीर्थ यात्रा में गया था, हमारे पिता के पास बहुत धन था, जब गया तो धन देख करके इसको लोभ हो गया, लोभ हो गया। वृंदावन पहुंचने पर इसने क्या कपट किया है, आर के हो संगे नाही यही संगे कला, मेरे पिता के साथ अकेले यही था, कोई साथ में नहीं था। तो भतुरा खवाइया छे बात, भतुरा खवाइया बापे करी ला पागल, भतूर खिला करके मेरे बीचा को पागल कर दिया। उसी समय इनकी स्मृति चली गई, होश में नहीं रहते हैं। भतूरा खवाइया बापे करी ला पागल, हमारे पिता को पागल कर दिया। सब धन लैया कहे चोरे लैल धन, मेरे पिता का धन लेकर कर हल्ला किया कि चोर ले गए, कोई चोर ले गया, लिया यह लेकिन हल्ला किया कि चोर ले गया। कन्या दीते चाहिए अच्छे उठाई लो बचन, और अब कह रहा है कि इन्होंने कन्या दान देने को कहा था। आप ही लोग सोचिए, कभी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए इस नीच से कहेंगे, इसका क्या पोजीशन है, हमारे परिवार का क्या पोजीशन है, कभी ये बोलेंगे? कुछ लोगों को संशय हो गया इतना ये बात बनाया और इतना सटीक कहा, वास्तव में तो गरीब था और उसके पिताजी धनी थे, बहुत धन साथ में लिए थे, पैसा लेकर गए थे, सब पैसा ले लिया और हालांकि एक चोर ले लिया, और अब कह रहा है कि कन्या दान देने के लिए कह रहे थे। अब बताइए, तुम्हारा सकल लोक करह विचारे, करह विचारे मोर पिता कन्या दीते जोग की इहारे। आप ही लोग सोचिए, हमारे पिताजी इतने बुद्धू हैं, क्या इनकी कन्या दान करने के लिए यही योग्य पात्र है? आप ही सब विचार कीजिए, छोड़िए और सब बात, आप ही लोग निश्चय कीजिए। ये तो सुनी लोकेर मने है ल संशय और इसकी बात सुन करके लोगों के मन में संशय हो गया। संभव है धन लोभे लोक छाड़े धर्म भय, तो लोग आपस में क्या कहते, हाँ भाई धन के लोभ से आदमी धर्म छोड़ देता है, ऐसा जरूर लगता है कि इसको धतूरा खिला करके पागल बना करके धन ले लिया, संशय हो गया कि धन के लिए मति बिगड़ जाती है। तबे छोट विप्र कहे सुना महाजन, पंचायत में जो बैठे थे बड़े बड़े लोग, तो उनसे छोटा ब्राह्मण बोला, छोट विप्र, तबे छोट विप्र कहे सुना महाजन, न्याय जिनी बारे कहे असत्य वचन। ये जो बोल रहा है न्याय प्राप्त करने के लिए, ये जीतने के लिए बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है टोटल झूठा। यही विप्र मोर सेवा है तुष्ट जबे हैला ताते आमी कन्या दीब, तोके आमी कन्या दीब आपने कहिला। ये ब्राह्मण देवता मेरी सेवा से संतुष्ट हो गए तो इन्होंने अपने आप कहा, हमने नहीं कुछ कहा, अपने आप कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करूंगा। तबे मुई निषिद्ध हूं, और मैं निषेध किया, मैं मना किया। तबे मुई निषिद्ध हूं, सुनल द्विजन द्विजन बर, तुम्हार कन्या योग्य नहीं मुई बर, मैं बर नहीं हुआ आपके कन्या के लिए। मैंने निषेध किया, कैसी बात मत कहिए। मेरे निषेध करने पर भी इन्होंने कहा तुम्हें पंडित धनी परम कुलीन, कहा मुई दरिद्र मूर्ख नीच कुलहीन। मैं इनसे कहा कि आप बड़े कुल के हैं, धनी हैं, परम विद्वान हैं, पंडित हैं, और मैं कहां नीच हूं, दरिद्र हूं, मूर्ख हूं, कुलहीन और पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो तबु सही विप्र मोरे, कहे बार बार तोरे कन्या दिलू तुम्हें करह स्वीकार, फिर भी ये हमसे बार बार कहे कि नहीं तुम स्वीकार करो, मैंने कन्या दिया तुमको, तुम स्वीकार करो। तबे अमी बलिलाम, तब जब बार बार कहे तब मैंने कहा, सुनो महामती तुम्हार स्त्री पुत्र ज्ञाति न हबे सम्मति। मैंने कहा कि आपकी पत्नी, आपके लड़के और आपकी गोतिया परिवार सब सम्मति नहीं देंगे, आप इसी बात लौटा लीजिए। तो कन्या दीते नारीबे हबे असत्य वचन, पुनरअपि कहे विप्र करिया जतन। मैंने कहा कि आपका वचन असत्य हो जाएगा, ये वचन मत दीजिए, ऐसा कर नहीं पाएंगे। लेकिन इन्होंने फिर कहा हमसे, कन्या तोरे दिलू द्विधा न करी है चित्ते। आत्मकन्या दिव केवा पारे निषेधिते। इन्होंने कहा कि पुत्री मेरी है, कौन निषेध करेगा, जो निषेध करने आएगा वो उसका तिरस्कार करूंगा, बेइज्जत करूंगा, और मैं तुमको कन्या दान दूंगा। तबे अमी बलिलाम दृढ़ करी मन, गोपाल आगे कह ये सत्य वचन। तब मैंने कहा कि ठीक है, जब आप अपना निर्णय बना चुके हैं सत्य, चलिए गोपाल जी के पास कहिए। मैंने कहा तबे यह गोपाल आगे कहिला, तुम्हें जाना यही विप्रे कन्या आमी दिला। हु बहु बोल रहा है कि तब इस ब्राह्मण ने, तब इन्होंने कहा गोपाल जी के सामने कि हे गोपाल जी, तुम्हें जाना, आप जानिए, आप साक्षी रहिए, यही विप्रे कन्या आमी दिला। इस ब्राह्मण को मैं कन्या दान दिया, मैं खड़ा था वहीं गोपाल जी के सामने, हमको दिखा करके गोपाल जी से कहे कि इसको मैं कन्यादान दिया, दे चुका। तबे आमी गोपाल साक्षी करिया, कहिलाम तार पदे मिनती करिया। तब मैं गोपाल जी को प्रणाम करके कहा, यदि यही विप्र मोरे ना दिले कन्यादान, साक्षी बोलाई मु तुम्हार हयो सावधान। तब मैंने गोपाल जी से कहा कि गोपाल जी, इस पर ध्यान दीजिएगा, यदि कन्यादान ये ब्राह्मण नहीं दे पाएंगे तो मैं आपको साक्षी करके बुलाऊंगा, सावधान रहिए, मतलब आप इस पर ध्यान रखिए, भूल मत जाइए, डेट वेट सब लिख लीजिए, क्या किस दिन कहा था, टाइमिंग भी, कितना बजे कहा और क्या कहा था, सब याद कर लीजिए। मैंने गोपाल जी को कहा तो गोपाल जी हंस करके स्वीकार किए। यही वाक्य साक्षी मोरे अच्छे महाजन, जार वाक्य सत्य करी माने त्रिभुवन। तो मेरा साक्षी है त्रिभुवन का ईश्वर, जिसके वचन को तीनों लोक मानता है, ब्रह्मा जी मानते हैं, शिव जी मानते हैं, सबसे प्रमाणिक वचन बोलने वाला मेरा गवाह है, वेद जिसका वाक्य है, सारे ऋषि मुनि देवता जिसको मानते हैं, वो मेरे गवाह है। तबे बड़े विप्र कहे ये सत्य वचन। ये सुन करके वो ब्राह्मण को सिखाया गया था, कहिएगा कुछ असमान नहीं है तो ये जो कह रहा है सब सत्य है। आखिर सत्य को कोई कहां से ढक सकता है, वही बोल देगा सब सत्य बोल रहा है। गोपाल यदि साक्षी देन अपने आशिये था, उसने कहा कि ये सब सत्य बोल रहा है, और गोपाल जी यदि साक्षी दें, साक्ष्य दें, गवाही दें यहां आ करके, तब कन्या दिवयानी जानी है निश्चय तार पुत्र कहे यही भाल मत है, भाल बात है। तो उन्होंने कहा समाज में कि गोपाल जी आकर के गवाही देंगे तो मैं अपनी कन्या का विवाह अवश्य करूंगा। तो ये सुन करके उसका लड़का बहुत खुश हुआ, कहा एकदम ठीक बात। बड़ा विप्रेत मने कृष्ण बड़ दयावान, जो बड़े ब्राह्मण थे वो सोच रहे थे भगवान दयामय है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वे अवश्य आएंगे। बड़े ब्राह्मण को विश्वास था, देखिए यही विश्वास का अंतर। बड़ विप्रेर मने कृष्ण बड़ दयामय अवश्य मोरे वाक्य ते हो करीबे प्रमाण, दयावान प्रमाण अवश्य मेरे वचन को वे सत्य करेंगे। पुत्रेर मने, पुत्र के मन में क्या था, पुत्रेर मने प्रतिमा ना आसीबे साक्षी देते, प्रतिमा यहां आएगी नहीं, मूर्ति चलेगी नहीं, साक्षी दिया नहीं जाएगा, अब मेरी बहन का विवाह इससे होगा नहीं, कंगाल से वो ये सोच रहा था। पुत्रेर मने प्रतिमाना आसवे साक्षी दीते यही बुद्धे दुई जन हैला सम्मत, तो ये सोच रहा था कि प्रतिमा आएगी नहीं, तो इसने भी कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब जब गोपाल जी आकर के गवाही देंगे तो ठीक है मेरी बहन का विवाह से हो, सम्मत हो गए, बड़ा ब्राह्मण भी सम्मत हुआ और उसका बेटा भी सम्मत हुआ। छोट विप्र कहे छोट विप्र कहे पंच करह लिखा, पत्र करह लिखा। तो जब लोग सम्मत हो गए तो छोटे ब्राह्मण ने कहा कि सब लोग लिखिए और साइन कीजिए, ये बड़े ब्राह्मण भी करें और जितने पंच जुटे हैं सब साइन करें लिखें। यदि गोपाल जी आकर के साक्ष्य देंगे गवाही देंगे तो अपनी कन्या का विवाह हमसे करेंगे, तो सब लोग सुन रहे हैं और सब लोगों का हस्ताक्षर चाहिए, जो पढ़े लिखे नहीं है उनका निशान चाहिए, सब लोगों का। तो लोग मुग्ध थे उस लड़के के विश्वास पर, उस ब्राह्मण के विश्वास पर, तो सब लोगों ने हस्ताक्षर किया, बड़े लड़के ने भी, तो उसके लड़के ने ब्राह्मण के लड़के ने किया और ब्राह्मण ने भी किया, और पत्र करह लिखन पुनः जैन नहीं चले ये सब वचन। आप लोग इसलिए मैं कह रहा हूं पत्र लिखने के लिए, यहां पत्र मतलब लेख है, वसीयत क्या उसको कहो, पंचनामा, पंचनामा इसलिए लिखने को कह रहा हूं हस्ताक्षर करने कि फिर वचन न टल सके। मैंने मान लीजिए जो गोपाल जी आए और गवाही दिए और फिर भी नहीं किया, तो इसलिए पत्र लिखना जरूरी था ना, पंचनामा। तबे सब लोक मिली पत्र पर लिखिला दुहाल सम्मति लैया मध्यस्थ रखिला, दोनों की सम्मति से, छोटे विप्र बड़े विप्र की सम्मति से मध्यस्थ रख दिए पंच वही, और वो पंचनामा भी रख दिया गया। तबे छोट विप्र कहे सुना सर्वजन ए विप्र सत्य वाक धर्म पर आए। फिर उसने कहा कि सुनिए आप लोग, ये जो ब्राह्मण हैं जो तीर्थ में गए थे, ये सत्य वाक्य बोलते हैं, झूठा नहीं बोलते हैं, धर्म परायण हैं, लेकिन स्ववाक्य छाड़ते यह नहीं कभू मन, स्वजन मृत्यु भय कहे असत्य बचा। ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन यहां पर इनके स्त्री पुत्र मर जाएंगे इस डर से असत्य बोल दिए कि हमको स्मरण नहीं है। इहार पुण्य कृष्ण आमी साक्षी बोलाइब तबे से विप्रे सत्य प्रतिज्ञा करीब। मैं इनके भक्ति से, इनके पुण्य से मैं गोपाल जी को बुलाऊंगा। क्या दयन है उसमें, हमारी भक्ति से नहीं, इनके भक्ति से आएंगे और उनको बुला करके मैं इनके वचन को सत्य करूंगा। एत सुनी नास्तिक लोक उपहास करे, नास्तिक होते हैं, मूर्ति को नहीं मानते, वो सब ठाठा करे थे, अरे सुनो अब मूर्ति चलेगी और बोलेगी, कहीं सुने हो? हंस रहे थे। लेकिन जो भक्त थे उस सभा में, तो केह बले ईश्वर दयालु आसित है पारे। कोई कोई कह रहे थे भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं और अद्भुत उनका स्वभाव है, आ भी सकते हैं। जो भक्त थे ऐसे बोल रहे थे कि वे आ सकते हैं, और दूसरे लोग लंठ लोग ऐसे बोल रहे थे, गुंडे लोग कि अरे कहीं मूर्ति चलती है, पत्थर चल करके आएगा। और भी हास करते थे कि लड़का विवाह के चक्कर में पड़ा है, इसका विवाह कराने के लिए भगवान आएंगे, चले तुच्छ पर्पस के लिए। सुनो ये भी क्या तमाशा हो रहा है। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, तबे से ही छोट विप्र गेला वृंदावन। वो जिस रास्ते से पहले गया था उसी रास्ते से चला, तबे से ही छोट विप्र गेला वृंदावन, दंडवत करी कहे सब विवरण। मंदिर में पहुंचा, गोपाल जी के दंडवत किया, सारी बात सुनाया। कहा कि ब्राह्मण ने आपके सामने कहा था कन्यादान करने के लिए, पर वहां जाकर के अपने स्वजन की मृत्यु के भय से बदल गए। ये तय हुआ, उस ब्राह्मण ने, बड़े ब्राह्मण ने कहा है कि यदि गोपाल जी आकर के साक्ष्य देंगे तब मैं कन्या का विवाह करूंगा। ब्रह्मांड देव तुम्हें बड़ दयामय दुई विपरीत धर्म रख भैया सदर। आप ब्राह्मणों के भक्त हैं, बहुत दयामय हैं, दोनों ब्राह्मण का धर्म रखिए दयालु होकर के। ये तो जानी तुम साक्षी देह दयामय, ये समझ करके आप साक्षी दीजिए, साक्षी दीजिए, गवाही दीजिए। जानी साक्षी नहीं दे तार पाप है, जो देखा है सुना है सब चीज और जान बुझ करके गवाही नहीं देता है तो उसको पाप लगता है। यदि आप नहीं गवाही देंगे तो आपको पाप लगेगा। जानते हैं, कुछ गवाह ऐसे होते हैं जो जाते ही नहीं है कोर्ट में, तो क्या भी एक पाप है। जब देखा है सुना है सब चीज, कम से कम नहीं देखा, यहां तो साक्षी देखने वाले को नहीं जाते हैं, और जा करके भी कितने लोग झूठ बोलते हैं। तो गवाही नहीं देना भी पाप है, तो आप पाप से बचिए। कृष्ण कहे विप्र तुम्हें जह स्वभवन है, सत्य करी मोरे तुम्हें करी है स्मरण, सभा करी मोरे तुम्हें कहे। भगवान ने कहा कि तुम जाओ अपने गांव में फिर और मीटिंग करके वहां से स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। मेरा स्मरण करना तो हाँ जाए भगवान बोले मूर्ति बोली तो, आविर्भाव हैया यानी तहां साक्षी दिव तबे दुई विप्रे सत्य प्रतिज्ञा राखी व मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा और दोनों की प्रतिज्ञा को मैं पूरा करूंगा सत्य करूंगा। विप्र बल्ले यदि है चतुर्भुज मूर्ति तबु तक तुम्हार वाक्य कारण न हो प्रतीति। आप वहां प्रकट होने की बात कहते हैं, आप चार भुजा में भी वहां प्रकट हो जाएंगे और गवाही देंगे किसी को विश्वास नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए, अब चलिए हमारे साथ। भगवान तो बड़े फिर वे बड़े। जब वहां द्विभुज की बात क्या है, चार भुजा से भी प्रकट होंगे तब भी आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यही मूर्ति गिया यदि यही श्री बदने साक्षी देह यदि तब सर्वलोक सुने। इसी मूर्ति से चल करके आप इसी श्रीमुख से जिसे बोल रहे हैं, बोल रहे थे भगवान कि मैं आ जाऊंगा मेरा स्मरण करना, इसी मुख से इसी शरीर इसी देह से चल करके और इसी मुख से जब गवाही देंगे तब सब लोग विश्वास करेंगे। कृष्ण कहे प्रतिमा चले कथा व न सुनी। भगवान ने कहा कि प्रतिमा चलती है ये मैं कहीं नहीं सुना हूं। तो विप्र बोले प्रतिमा है या कह के ने बानी, तो प्रतिमा होकर के बोल कैसे रहे हैं। प्रतिमा चलती नहीं है तो बोलती नहीं है ना, जब बोलती है तो चलती भी है। आप तो चलना पड़ेगा नहीं तो मैं शरीर छोड़ दूंगा यहां पर। प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्र लागी करो तुम्हें अकार्यकरण। अब ब्राह्मण के लिए कार्यकर्म कीजिए, ब्राह्मण को आप बहुत मानते हैं, ब्राह्मण का लात भी छाती में सहे हैं आप। भृगु जी ने मारा था तो उल्टे चरण को सहलाने लगे, तो आपको चलना होगा। आत्महत्या की धमकी नहीं दिया तो मैं विनोद में कह रहा हूं। हसिया कहे न गोपाल, हसिया गोपाल कहे सुना है ब्राह्मण तुम्हार पाछे पाछे अमी करी बगमान। लेकिन भगवान ने एक बात कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, मैं चलूंगा लेकिन पीछे पीछे चलूंगा। और उलटिया आमा तुम्हें ना करी है दर्शन, आमा के देखले अमी रहिब से स्थान। हमको कभी देखना मत। तो ब्राह्मण ने कहा तो कैसे जानूंगा कि आप पीछे पीछे आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरे पैर में पायजेब है, नुपुर है, वो रुंझुन रुंझुन बोलता चलेगा, देख रहे हैं मेरे पैर में पायजेब है, आज भी है भगवान के पैर में पायजेब। उसने कहा हाँ तो ठीक। तो भगवान ने कहा कि जब समय आए भोग लगाने का तो वहां मैं रुकूंगा, सेवा करना भोग लगाना जो भी, लेकिन चलते समय मत देखना, चलते समय अगर देख लिए तो जहां देखोगे वहीं रह जाऊंगा। ब्राह्मण विश्वास के ठीक है चलेंगे। तो शेष कथा कल कहेंगे। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद।